ओम शांति। सभी प्यार से तीन बार ओम शांति बोलिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राकृतिक सौंदर्य से सजी अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित इस मधुबन पावन भूमि पर बेहद वैराग्य वृत्ति और अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्टी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी मम्मा बाबा आदि रत्न और योगियों की महान कर्म भूमि पर तपस्या करने आए हो तो ऐसी पावन भूमि पर शिव बाबा, मम्मा बाबा, हमारी सभी पूर्वज दादियों दादाओं के साथ साथ आदरणीय शशि दीदी, शिलू दीदी और समस्त मधुबन निवासियों की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस योग तपस्या भट्टी के उद्घाटन में बाप दादा की अनन्य रतन, मधुबन का श्रृंगार और सर्व ब्राह्मण परिवार की अति प्रिय आदरणीय सिलू दीदी जी पधारी है, जिनका हम एक हाथ की ताली से अभिवादन करते हैं। आदरणीय दीदी जी के सरल सौम्य व्यक्तित्व से ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहन परिचित है ही, लेकिन यदि कोई नए भाई बहन सभा में हो तो दीदी का संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने जन्म स्थान मुंबई में आपको परमात्म प्राप्ति का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद मम्मा बाबा और दादियों की दिव्य पालना में पलते हुए लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का सुंदर बैलेंस रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 69 में आपने अपना समग्र जीवन 21 वर्ष की आयु में मानवता और प्रभु सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद कुछ वर्ष मुंबई, हैदराबाद, काठमांडू वगैरह सेवाओं में जाकर के कहीं सेवा स्थान खोले। उससे अतिरिक्त 74 से 76 तक मॉरिशियस और कुछ अफ्रीकन देशों में अपनी सेवाओं द्वारा परमात्मा संदेश का परचम लहराने के बाद 76 से आप स्थायी रूप से बेहद मधुबन घर में ही अपनी बेहद की सेवा दे रहे हो। आपकी वाणी में स्वर कोकिला से मिठास और माँ सरस्वती की ज्ञान वीणा की झंकार है। बाप दादा ने आपको सर्व के पापों को हरने वाली, हरि का द्वार दिखाने वाली, हर की पौड़ी कहकर आपकी महिमा की है। आप वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका के रूप में वर्षों से मधुबन में होने वाले राजयोग शिविर एवं भट्टियों का सुंदर रीति से संचालन कर रही है। आप ही वह महान आत्मा है जो पहले पहले बाबा की टेलीविजन की सेवाओं के माध्यम से ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने और जी टीवी, सोनी टीवी अनेक चैनल पर आपके वक्तव्य प्रसारित हुए। इससे अतिरिक्त आज तक भी आपकी आवाज में रिकॉर्ड की गई अति लोकप्रिय राज्य कमेंट्री सभी सेवा केंद्रों पर सुनाई जाती है, जिससे सुनकर भाई बहन गहन आत्म अनुभूति में खो जाते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कुशलतापूर्वक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के साथ साथ एक कुशल अनुवादक भी है। बाप दादा मिलन के समय बाबा के महावाक्यों का बहुत सरल और सटीक इंग्लिश भाषा में अनुवाद करके सुनाने की सेवा भी आप करते आए हैं। आपके ऐसी अनेक विशेषताओं के लिए स्वयं बाप दादा ने आपको अनेक वरदानों से सुसज्जित किया है। आप अपनी इंग्लिश भाषा की योग्यता अनुसार बाप दादा ने आपको इस विशेषता के लिए मधुबन बेहद घर में डबल विदेशी भाई बहनों की सेवा के लिए चुन लिया, तो इसी महान तपस्विनी और विद्या की देवी हम सब के बीच में आज उपस्थित थे, जिसके श्रीमुख से आज हम योग तपस्या भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में सुनेंगे। उससे सारी भट्टी के लिए सुंदर प्रेरणाएं मिलेगी और मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। तो आदरणीय सिलो दीदी जी, ओम शांति।
आप अपना भी परिचय दीजिए।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी अरुणा बहन बड़ौदा अटलादरा गुजरात से आए हैं आपकी सेवा में, और दूसरी एक भट्टी है वो सेवा में भी यहाँ 15 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा बड़े का आशीर्वाद से ये भाग्य मिला है, इसीलिए बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। थैंक यू। ऑप्शन अगर हो सके तो जो थोड़े पीछे बैठे हैं आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। भाई लोग यहाँ आगे बैठ सकते, बहने भी जो नीचे बैठ सकते हो जरूर आके बैठे, क्योंकि नीचे बैठ के और आगे बैठने का भी एक सौभाग्य होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे बाबा की गोदी में बैठे हैं। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, थोड़े हटकर बैठना,
थोड़ा पीछे जैसे वो बैठे, बस सारे नहीं,
अभी नहीं, अभी सब बैठ जाइए, अभी जगह नहीं है। भाई लोग 2-3 आ सकते, आना है तो।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, प्यारे बाप दादा की कर्म भूमि, सारे विश्व की आत्माओं के लिए विश्राम भूमि, ऐसे मधुबन में आप सभी का हमारे तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मेरठ से आप सभी आए हैं, हमारी सुनीता दीदी, कौन सुनीता दीदी कौन है, अच्छा आप, हाँ सुनीता दीदी और उषा दीदी, आशा दीदी, हाँ सब पुराने जाने पहचाने बहने हैं। और खास करके मेरठ में तो हमारी देवता दादी नहीं? उनको हम बहुत याद करते हैं। बाबा ने उनको सुंदर टाइटल दिया देवता, क्योंकि उनका यह सौभाग्य था कि कैसे सत्य की शहजादी उनके तन में कितने दिनों तक रहती थी और कितना वो सुंदर स्वर्ग का वर्णन करती थी। जिन्होंने देवता दादी को देखा था हाथ उठाएं, अच्छा जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएं, अच्छा वो तो बहुत है। बाबा ने उनको सुंदर अलौकिक नाम भी दिया था, कमल सुंदरी, नहीं कमल सुंदरी, कमल समान सुंदर विचारों वाली थी। आज ये फुलवारी हम देख रहे हैं, कितनी टीचर्स आई है, आप टीचर्स हाथ उठाएं, 21, अच्छा हाथ उठाएं सब टीचर्स बहने, अच्छा अच्छा पहली बार शायद भट्टी इस मत पांडव भवन भट्टी में आए, पहले हुआ है बहुत साल पहले, 2019। अच्छा, तो बहुत सुंदर भट्टी का प्रोग्राम हमारी मुन्नी दीदी ने बनाया है पांडव भवन के लिए, और आप सभी जैसे ही पहुंचे आपको ये माला दी गई। एक अभी से मोबाइल बजना शुरू हो गए हैं, मोबाइल सब स्विच ऑफ करें। आप सभी को एक माला मिली है जिसके साथ बैज लगा हुआ है। आपने बैज में पढ़ा होगा इस भट्टी को क्या नाम दे रहे हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्टी। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति से लेकर अंतिम पुरुषार्थ तक हमें कैसे इस यात्रा पर चलना है उसके लिए यह योग भट्टी है। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर लक्ष्य दिया है। दुनिया वाले जब यहाँ आते हैं या कोई सेंटर पर जाते हैं या एग्जीबिशन मेला देखते हैं तो पहला प्रश्न उनका यही होता है कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, पूछते हैं ना, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। तो सरल शब्दों में हम लोग उनको क्या जवाब देते हैं, यहाँ का उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। यह एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जैसे और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कई प्रकार के व्यवसाय के लिए पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी का ये उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। अब कहना तो बड़ा सहज है लेकिन मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या पुरुषार्थ है, कौन से माइलस्टोन्स है, कदम है, जिसको हम कहेंगे छोटे छोटे लक्ष्य हैं, जिन लक्ष्यों को पार कर हम उस उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो लक्ष्य तो कई होते हैं और वो लक्ष्य पार करते, जैसे कोई बहुत बड़ा भवन बनाते हैं तो कितने उसमें फेजेस आते हैं, पहला फेज में ये काम करेंगे, दूसरे फेज में ये काम करेंगे, तीसरे फेज में ये करेंगे, तब जाके पूरा प्रोजेक्ट पूरा होता है। अब मनुष्य से देवता बनना है तो उसमें कई कदम है या कहेंगे कई लक्ष्य हैं। एकदम से तो देवता नहीं बन जाएंगे ना, बल बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में जीवन मुक्ति माना जिस घड़ी निश्चय बैठा कि हम सचमुच देवता बनेंगे तो वो सेकंड में जीवन मुक्ति, वो निश्चय बैठा, नशा चढ़ा, ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ हमारा चलने लगता है। तो मनुष्य से देवता बनना और उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति से लेके अंतिम पुरुषार्थ क्या है हमारा। तो जैसे ही हम यहाँ आते हैं, इस संस्था में आते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है, पहले 7 दिन का कोर्स करिए, ऐसे कहते हैं ना। और 7 दिन का जब कोर्स हो जाता है, 7 दिन 7 लेसन उनको देते हैं, तो फिर पूछते इसके बाद क्या, तो हम उनको कहते इसके बाद तो रेगुलर पढ़ाई है, रोज हमारी क्लासेस होते हैं, और ये ऐसी पढ़ाई है जो अंतिम श्वास तक हमें पढ़नी है, अंतिम क्षण तक पढ़नी है, जो बाबा कहते हैं अंत का जो समय आए तो उस समय भी वो पढ़ाई हमारे कानों में पड़ती रहे। हाँ, गंगा का घाट हो, गंगा जल मुख में हो और प्राण तन से निकले, तो अंतिम घड़ी तक हम विद्यार्थी होके रहते हैं। और वैसे भी देखा जाए जीवन ही 7 दिन का होता है, सोमवार से शुरू होकर रविवार तक आता है, फिर सोमवार से चालू हो जाता है ना, 8वां दिन तो कभी आता नहीं है, और इन 7ों दिनों में से 1 दिन जन्म होता है और 1 दिन मृत्यु होती है। तो जन्म हुआ तो मृत्यु तो अवश्य होना ही है, आना ही है 1 दिन, तो जीवन ही 7 दिन का है, तो मानो कि ये जीवन भर की पढ़ाई है। वो पढ़ाई तो चलो बाबा कहते हैं ना 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य जीवन, पढ़ाई का जीवन होता है, फिर गृहस्थी में एंटर कर लेते हैं, फिर वानप्रस्थ बनते हैं, फिर संन्यास आश्रम, 4 आश्रम में डिवाइड किया है शास्त्रों में मनुष्य का जीवन, 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 50 तक गृहस्थ, 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ, सब कुछ बच्चों को हैंडओवर कर देते हैं, और 75 के बाद संन्यास, काशीवास कर देते हैं, बस जाकर सन्यासी बन गए। तो परंतु वो तब था जब मनुष्य की आयु 100 साल होती थी, हाँ, कोई ऐसे अकाले मरता नहीं था, लेकिन आजकल तो भरोसा है, बाप बैठे बच्चा चला जाता है, कितना बड़ा दुख होता होगा पिता को जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो, मानो दुखों का पहाड़ आज की दुनिया में सब पर गिरता है। तो 100 साल तक तो कोई मुश्किल से जीता है, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने तो कहा तुम तो अकाल मूरत आत्मा हो, तुम्हारा तुमको कभी काल खाता नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं था तो समझते थे हम मर जाएंगे। तो जितना भी हमारा जीवन है, जितना भी समय संगम युग में हम जीते हैं, उन वो चारों जो आश्रम है वो बाबा कहते एक साथ निभाने हैं, एक साथ ब्रह्मचर्य आश्रम भी हो क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, स्टूडेंट है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, पढ़ना और पढ़ाना, इसलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे पढ़ो और पढ़ाओ, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सब स्टूडेंट्स हैं, टीचर हमारा एक ही है, और हमारे ये 4 विषय हैं जो हम पढ़ते हैं, और हर मुरली में ये 4ों विषयों पर बाबा कुछ न कुछ गहराई की बातें सुनाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम तो है ही, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्माचार्य है, तो ब्राह्मण बने तो ब्रह्मा का जो आचरण था वो हमने भी आरंभ किया, और ब्रह्मा से या ब्रह्म से कितने शब्द जुड़े हुए हैं वो सब हमारी धारणाएं हैं, ब्रह्मा से ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा से ब्रह्मा भोजन जुड़ा हुआ है तो शुद्ध आहार खाना शुरू करते हैं, ब्रह्मा से ब्रह्म मुहूर्त जुड़ा हुआ है तो अमृत वेले 4 बजे योग करते हैं, तो और ब्रह्मा से हम तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म और तीसरा बताया ब्रह्म भोज, और चौथा है ब्रह्म ज्ञान। तो इतना ऊंचा ज्ञान जो शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें दे रहे हैं, भागीरथ ने भारत में गंगा लाई शिव की जटाओं से, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह इतना ऊंचा ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन माना पवित्र जीवन। हम जब आए तो पता ही नहीं था कि पवित्रता भी इतनी ऊंची चीज है। पहले क्या समझते थे मनुष्य, हम क्या समझते थे कि विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी, काम विकार नहीं होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्रोध नहीं होगा तो समाज में कैसे जी सकेंगे, लोभ नहीं होगा तो परिवार को कैसे संभालेंगे, मोह नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पालेंगे, अभिमान नहीं होगा तो कैसे हम सब परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। मानो हम समझते थे ये विकार ही हमारा जीवन है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। और बाबा ने आके क्या बताया कि बच्चे ये पांच विकार ये नरक का द्वार है, ये माया है, ये रावण है, इनसे ही तुम्हारे पाप कर्म हुए हैं, तुम पाप आत्मा बन गए हो। तो बाबा ने आकर के जो शिक्षा दी उससे आत्मा को तीसरा नेत्र मिल गया और परिणाम स्वरूप हम सच्चे ब्राह्मण बन गए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम पार किया। फिर बाबा कहते हैं कि रहना भी परिवार में है, परिवार को छोड़ना भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने तो धक से सब त्याग कर दिया, शिव बाबा ने कहा ब्रह्म माताओं के हवाले कर दो और विल कर दिया, आठ बहनों के नाम पर सारी प्रॉपर्टी, चल अचल प्रॉपर्टी। और एक बीज डाला, पहले पहला बीज ब्रह्मा बाबा ने डाला और उस बीज से आज हम देख रहे हैं वट वृक्ष की तरह कैसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारी दुनिया में 140 देशों में फैल चुका है। तो देखो शुरुआत तो ब्रह्मा ने की, तो इसीलिए परंतु उस समय तो बाबा ने सब कुछ त्याग किया लेकिन परिवार नहीं छोड़ा। यही विशेषता इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, ऐसे नहीं कि सन्यासी बन गए। बाबा कहते बेहद का सन्यास जरूर है लेकिन घरवार का सन्यास नहीं है। तो परिवार भी साथ में ही था, सब साथ में ही थे। और कैसे 14 साल तपस्या की, तो इसीलिए ब्रह्मा ने नींव डाली और आज हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। तो परिवार में भी रहना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बाल बच्चों को भी संभालना है, नौकरी धंधा भी करना है, सब जिम्मेदारियां भी निभानी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है लेकिन फंसना भी नहीं है। छोड़ना भी नहीं तो फंसना भी नहीं, और तीसरा क्या, नया भी नहीं जोड़ना है क्योंकि समय कम है। भाई नई बिजनेस शुरू करे, नया करे, बढ़ाते जाएं, बाबा कहते वो भी नहीं। तो इसीलिए और नई झंझट नहीं पैदा करो क्योंकि जिसमें जिस नई प्रोजेक्ट में या जो कुछ चाहेंगे तो उसमें बुद्धि तो जाती ही है। तो इसीलिए बाबा की सेवा में लग जाओ, तन मन धन से सेवा करो। वो सन्यासी जो है वो तो तन को मन को धन को सबको, पत्नी को बच्चों को सबको माया समझ के सन्यास करते हैं ना, सब माया है। ये शरीर भी माया, इसलिए शरीर को कष्ट देते हैं, कितना कष्ट देते हैं भक्ति में, कितना अपने आप को कष्ट देते हैं। फिर मन भी माया का रूप है तो मन को दमन करते हैं, फिर धन को भी माया समझते हैं तो इसीलिए धन का भी त्याग, फिर पत्नी का भी त्याग। या पत्नी वो तो क्या कह देंगे उनको, वो तो नरक का द्वार है, और फिर उसका भी त्याग। बच्चे भी माया है और बाबा कहते हैं ये कुछ भी माया नहीं है, ये तन से सेवा करो, माया नहीं है जो इसको आप कष्ट दो। ये मन तो आपका मित्र है, इस मित्र के द्वारा ही भगवान से मिल सकते हो, इसीलिए भगवान ने कहा मन को मेरे में रखो, मन मना भव। तो मन तो हमारा मित्र है, दुश्मन थोड़ी है जो मन को मारना है। और धन तो आवश्यक है तभी तो आजीविका चलेगी, और बच्चे तो फूल है, वो तो निर्दोष है, उनका क्या दोष। लेकिन हाँ, मोह नहीं रखो। पत्नी भी नरक का द्वार नहीं है, वो तो स्वर्ग का द्वार है। परंतु दृष्टि को पवित्र बनाओ तो छोड़ो कुछ भी नहीं। माया नहीं है वो, पर क्या है माया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया है। बच्चे माया नहीं है, लेकिन मोह नहीं रखो। धन माया नहीं है, पर लोभ नहीं रखो। स्त्री माया नहीं है, वो तो शिव शक्ति है। तो मानो बाबा हमारी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करते हैं। तो हम घर गृहस्थ में रहकर भी ये कर सकते हैं। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम भी है, छोड़ा कुछ भी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम भी है, वाणी से परे जाना है, घर जाना है, घर जाना है। दीदी का महीना आज से शुरू हुआ है। बड़ी दीदी तो सदा यही कहती थी, घर जाना है, अब घर जाना है, हाँ घर जाना है। तो सदा ही उनके मुख से यही निकलता था, क्योंकि दीदी जी एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, मधुबन में रहती। कई प्रॉब्लम्स तो आती है, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा घर, इतने बाबा के बच्चे, तो समस्या कोई आती थी तो कोई आकर के वो समस्या बताता था, या कोई की शिकायत कुछ भी समझो करता था। तो दीदी यही कहती थी, अब छोड़ो छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, घर जाना है। तो घर जाना है माना वानप्रस्थ में जाना है, वाणी से परे जाना है। छोड़ो छोड़ो तो छूटो, पकड़ के नहीं रखो कोई भी बात। कि पकड़ के रखेंगे खुद ही दुखी होंगे। हाँ, दादी गुलजार तो यही कहती थी ना, वो बात तो आती है और चली जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं बुद्धि में, उसको सारा टाइम वही सोचते रहते हैं, ना पकड़ के रखते हैं। तो बात तो छोटी होती है, लेकिन हम पकड़ के रखते ना, इसीलिए वो बढ़ जाती है। अगर उसको छोड़ो तो वो तो छूट जाएगा, वो बात तो चली जाएगी। तो इसीलिए हाँ, बाबा भी हमें कहते हैं वानप्रस्थ में जाना है, कहीं भी ज्यादा फंसो नहीं। तो छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, कुछ नया जोड़ो भी नहीं, लेकिन क्या करो, हाँ वो सब तीनों तो नहीं करो, पर क्या करो, क्या निभाओ, क्योंकि हिसाब किताब है ना। तो निभाओ जरूर, हाँ छोड़ के नहीं सन्यासी बन जाना है, निभाओ जरूर, क्योंकि हिसाब किताब हमारे है। जब तक हिसाब किताब पूरे नहीं हुए तब तक तो निभाना है। फिर चाहे दुखी हो के निभाओ, चाहे खुशी में रह के निभाओ। पर दुखी हो के निभाएंगे तो खुद को ही दुख पहुंचाएंगे, और खुशी से निभाओ तो सब सहज पार हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने ये चार आश्रम दिए, जो बाबा कहते सदा साथ में ही निभाओ, क्योंकि समय कम है। तो ब्राह्मण बने, और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। जिसको बाबा कई बार कहते कच्छ में कुरम, कुरम माना किताब। तो हमेशा ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो कथा करते हैं या कहीं भी वो पाठ करते हैं या जो कुछ भी, तो हमेशा शास्त्र जो होता है उनके बगल में होता ही है, क्योंकि उनको वही करना है, धर्म की रक्षा करनी है। तो हमारा भी तो यही कर्तव्य है। तो इसीलिए जैसे ही बाबा के बच्चे बने, पढ़ाई तो हमारी चलती रही, लेकिन साथ साथ पढ़ाना भी चालू कर दिया, कमाई भी चालू हो गई। वो जो पढ़ाई होती है तो उसमें तो पढ़ते ही हैं, कमाई नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी शुरू हो गई है ना। दूसरों की सेवा करते हैं तो कमाई होनी शुरू हो जाती है, जमा का खाता बनता है। परंतु पढ़ाई के साथ कमाई, फिर कमाई के साथ फिर लड़ाई लड़ाई भी शुरू हो जाती है, माया दुश्मन बन जाती है। जो बाबा ने उस दिन भी कहा कि पहले तो माया की गोद में थे, तो माया से तो बहुत प्यार मिलता था, फिर माया की गोद छोड़कर जब प्रभु की गोद में आते हैं तो क्या होता है, माया को ईर्ष्या होती है कि मेरी गोद से उतर करके प्रभु की गोद में ये क्यों गया। तो ईर्ष्या होती है माया को, तो माया से लड़ाई चालू हो जाती है। लेकिन फिर बाबा कहते लड़ाई तो भले चले ना, कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकतू हो रहे, ये सब जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब हैं वो चुकतू हो रहे। तो अंदर की लड़ाई है, अपने संस्कारों की भी लड़ाई है, फिर उसके साथ साथ क्या और है, सफाई। सफाई होती है, मन की सफाई हो जाती है, क्योंकि शुद्ध संकल्प बाबा हमें सिखाते कैसे करो। बाबा कई स्मृतियां दिलाते हैं, तुम कौन हो, स्मृतियां दिलाते हैं। दादी जानकी तो कितने नशे में रहती थी, याद है ना, 3 बार ओम शांति कहकर क्या कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो इसीलिए ये स्मृति दिलाती थी कि तुम कौन हो और तुम किसके हो और तुमको करना क्या है। तो जैसे स्मृति दिलाती थी तो तुरंत आत्मा को नशा चढ़ जाता था, तो नशा चढ़ाती थी। तो निश्चय बैठा, नशा चढ़ा और ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ हमारा चालू हो जाता है। तो फिर ब्राह्मण बने, अब ये ब्राह्मण तो सब बन गए, हम सब क्या कहेंगे, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मण से फिर आगे क्या करना है, यात्रा है ना, खड़े तो नहीं होना है वहीं पर। तो ब्राह्मण तो है ही, लेकिन ब्राह्मण के आगे क्या करना है, बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा बाप समान बनना है। हर मुरली में बाबा हमको कहते हैं ब्रह्मा बाप ने जो किया, जो पुरुषार्थ किया ब्रह्मा बाबा ने, वो पुरुषार्थ तुम बच्चों को भी करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया अगर हम देखें ना, तो वो जब ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम जो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं थी, वो बाबा हमें याद दिलाते, हर मुरली में याद दिलाते ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बस आत्मा की स्मृति आ गई। बाबा की लौकिक युगल थी, बहू थी, सारा परिवार था, लेकिन कैसे बाबा ने अपनी स्मृति में परिवर्तन किया। यशोदा बाबा की युगल का नाम था, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्माएं, यशोदा आत्माएं। बाबा की बहू का नाम राधिका था, राधिका आत्माएं, ताकि वो इसकी युगल उनकी बहू सब पढ़े कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का पाठ इतना पक्का किया बाबा ने, स्वयं के लिए भी और परिवार के लिए भी। और कैसे एक धक से सब स्वाहा कर दिया, भगवान ने कहा निश्चय बैठ गया, रोज मुरली में आता है, विनाश का साक्षात्कार किया, एकदम वैराग आ गया। फिर नई दुनिया का साक्षात्कार किया, तो जिम्मेदारी भगवान ने उनको दी कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो जिम्मेदारी जिसको मिले, जिसके माथे मामला, उसको नींद कैसे आए, हैं बाबा कहते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली कि आपको ऐसी दुनिया बनानी है, पर कैसे बनानी है वो तो बाबा को पता ही नहीं चला, समझा नहीं, परंतु शिव बाबा ने सारा किया। कैसे चमत्कार कराए, तो ब्रह्मा बाबा की तो शक्ति नहीं थी ना, कौन से चमत्कार कराए। सबसे पहला चमत्कार तो ये था कि साक्षात्कार कराए। शुरू में साक्षात्कारों की इतनी धूम मची जो कोई सोच भी नहीं सकता है, कितने साक्षात्कार हुए। मिनट जो भी आता था बाबा को देखता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता था, घर बैठे भी करते थे। तो साक्षात्कारों की धूम एक क्रांति हो गई। फिर दूसरा चमत्कार क्या हुआ कि महिलाओं को, माताओं बहनों को ज्यादा हुए वो साक्षात्कार, पुरुषों को नहीं, और माताएं बहनें खींच के हुए आ गए, वो ज्यादा आई। और देखो बाबा ने कैसे परिवार बना दिया, अलौकिक परिवार। और जो माताएं बहनें घर 4 दीवारों में कैद रहती थी, कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं, कहीं बाहर आना जाना नहीं, और पुरुष लोग तो दुनिया की सैर करते थे, बिजनेसमैन थे सिंध में, तो वो सिंधी लोग जो हैदराबाद सिंध के थे वो सब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो तो दुनिया घूमते थे, सब देशों में बिजनेस अपनी रखते थे, और उनकी पत्नियां 4 दीवारों में कैद। और जब शिव बाबा आए तो सब नारी शक्ति की ललकार चालू हुई। वो पर्दे नशीन रहती थी माताएं वहां, लेकिन शिव बाबा ने सबको शिव शक्ति बना दिया, है ना। पर्दा वर्दा पहले तो बाबा ने अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी भी पर्दा करती थी, यशोदा बहू भी पर्दा करती थी, घूंघट निकालती थी, बाबा ने सबका घूंघट हटवा दिया सबका। तुम शिव शक्तियां हो, शिव शक्ति को घूंघट में देखा है क्या? तो एकदम बेहद में ला दिया, सब हदों से पार किया। फिर बाबा कहते तो वानप्रस्थ भी बन गए, वानप्रस्थी। फिर सन्यास, तो सन्यास हमारा भी बेहद का है, तो इसलिए ये जब चारों आश्रम हमारे साथ में है, तो फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो क्या कैसे फॉलो करेंगे? कोई भी कर्म करो, कोई भी बोल बोलो, कोई भी मन में विचार लाओ, उस समय पहले ये सोचो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचता, ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलता, ब्रह्मा बाबा ऐसे करता। अगर ब्रह्मा बाबा नहीं करेगा, नहीं करता, नहीं बोलता, तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनना है। इसको कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो फादर, सन शोज फादर। जो पिता ने किया बच्चा उस फादर का शो करता है। और ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को एक्यूरेटली फॉलो किया, जो शिव बाबा ने कहा, और देखो कैसे संपूर्ण बन गए, संपन्न बन गए। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो पहले तो ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण के बाद फिर क्या बनना है, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण। अब ये जो दो शब्द हैं संपन्न और संपूर्ण, उसका भी अर्थ है। कई पूछते हैं दोनों में अंतर क्या है, संपन्न और संपूर्ण में अंतर क्या है, क्या अंतर है, कौन बताएगा कि क्या अंतर है? संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे, अंतर है या एक ही बात है? हाँ? क्या बताइए, हाथ उठाओ जिसको आता हो अर्थ। आपको आता है बहन पीछे, हाँ हाथ, हाँ बोलो। संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे, किसमें? हाँ, तो सर्वगुण संपन्न माना गुणों में संपन्न, और संपूर्ण निर्विकारी। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो सर्व कलाओं में संपूर्ण और सर्व गुणों में संपन्न। तो संपन्न का को दूसरे शब्दों में कहेंगे फुल, जैसे मटका होता है या घड़ा होता है वो संपन्न होता है, माना पूरा भरा हुआ होता है, उसको कहेंगे संपन्न फुल। और फिर संपूर्ण माना कि जैसे पूरा ही शेप वो संपूर्ण हो गया। तो जैसे चंद्रमा की कलाएं दिखाते ना, तो पूर्णमासी की रात चंद्रमा संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न किस में, लाइट में, उसका जो आकार होता है उस वो आकार में वो संपूर्ण हो जाता है, गोल आकार। बाकी और जितने भी दिन है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है ना, लेकिन पूर्णमासी की रात वो गोलाकार, पूरा गोलाकार बन जाता है, तो कहेंगे संपूर्ण। और संपन्न, तो संपन्न माना फुल ऑफ लाइट, लाइट से भरपूर, संपन्न लाइट हो गई, पूरी लाइट और आकार में संपूर्ण। तो सर्व गुण संपन्न, सर्व गुणों में संपन्न, और 16 कलाओं में संपूर्ण, क्योंकि 16 दिन लगते हैं संपूर्ण पूर्णमासी आने में, अमावस्या से लेके पूनम तक कितने दिन लगते हैं, 16 दिन। तो 16 दिन में वो संपूर्ण बन जाता है। फिर कहेंगे 16 दिन में वो अपूर्ण भी बन जाता है, जो बाबा कहते हैं ना फुल, फर्स्ट फुल, फिर कैसे धीरे 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 आत्मा की पवित्रता की कलाएं कम होती जाती है, और नो कला, क्योंकि तो कला कौन सी, पवित्रता की कलाएं। तो संपन्न माना भरपूर, फुल, और संपूर्ण माना कंप्लीट, कंप्लीट, इसको इंग्लिश में ये दो शब्द कहेंगे। तो बाबा, तो जैसे ब्रह्मा बाप बने तो हम बच्चों को भी ऐसे ही बनना है, तो रोज अपनी चेकिंग करनी है। इसलिए बाबा चार्ट के लिए कहते हैं एक एक गुण की चेकिंग, 36 गुण तो मेन बाबा ने दिए ही है, और उसमें भी बाबा कहते हैं एक है अनादि गुण, दूसरे है आदि गुण। तो अनादि गुणों में भी संपूर्ण संपन्न, और आदि गुणों में भी संपन्न और संपूर्ण, क्योंकि वो अनादि गुणों से ही आदि गुण आते हैं, है ना। जैसे सात रंग दिखाते हैं तो सात रंग ओरिजिनल रंग होते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सात रंग है, ये बेसिक रंग होते हैं। हाँ, तो वो सात रंग जिसका इंद्रधनुष बनता है वो सात रंग होते हैं, और इन्हीं सात रंगों से फिर इनको जोड़ करके और कई रंग बन सकते हैं। तो सात सुर होते हैं, सात रंग होते हैं, सात दिन होते हैं, है ना। सात सुर, सारे गम पदनी, ये सात हो गया, और फिर सा, तो इसीलिए ये सब सात, तो सात की सारा जिंदगी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सात आपके ओरिजिनल गुण हैं। कौन से? पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान भी एक गुण है, ज्ञान कोई गुण से अलग नहीं है, ज्ञान भी एक गुण है। हाँ, ये व्यक्ति कितना ज्ञानी है तो ये भी एक गुण है ना। तो ज्ञान जब हमें मिला, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमधाम का निवासी हूँ, तो तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, ये सारा ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं, इस ज्ञान के आधार से फिर दूसरा कौन सा गुण आता है? पवित्रता। क्योंकि जैसे ये ज्ञान मिला मैं आत्मा हूँ और मैं अपने असल स्वरूप में इतनी शुद्ध हूँ, तो पवित्रता आत्मा को अनुभव होती, वो स्मृति आती है कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध थी, परमधाम में कितनी शुद्ध थी, सत्युग में भी कितनी शुद्ध थी। तो स्मृति आते ही वो शुद्धि की महसूसता होने लगती है, तो पवित्रता आती है, और पवित्रता से ही शांति आती है, है ना। कई लोग कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर शांति क्यों नहीं अनुभव होती है? क्योंकि मन में पवित्र विचार नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी मन में चलते ही रहते हैं, तो शांति कहाँ से आएगी? शांति का आधार तो पवित्र विचार है ना। और जैसे बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, वो पवित्र विचार मन में लाते हैं, ऑटोमेटिकली शांति का अनुभव होता है। फिर शांति के बाद चौथा गुण कौन सा है? आत्मा, ज्ञान, पवित्रता, शांति। और जैसे मन में शांति आई तो खुद के लिए भी प्यार पैदा होता है, खुद के लिए भी प्रेम चाहिए, और फिर सबके लिए प्रेम। तो ये है प्रेम। तो जैसे मन में शांति आई तो सबके लिए प्रेम पैदा हो जाता है, और जहाँ प्रेम है सबके लिए, फिर है सुख, आत्मिक सुख। ये सारे गुण जो है वो आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये कोई बाहर से नहीं मिलते हैं, ये बाहर की चीज है ही नहीं, ये आत्मा की चीज है। तो अंतर का जो आत्मिक सुख है उससे अनुभव होता है। जहाँ ये सुख है वहीं पर छठा गुण है आनंद। आनंद ये भी आध्यात्मिक शब्द है, ये भौतिक शब्द नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी साधु संत महात्माएं हैं उनके जो नाम होते हैं ना वो सब आनंद में समाप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वामी, सत्यानंद स्वामी, प्रेमानंद, धर्मानंद, विवेकानंद, है ना, आनंद। तो विवेक से आनंद आता है, प्रेम से आनंद आता है, शांतानंद, शांति से आनंद आता है। तो इनका चरम रूप है आनंद, वो आध्यात्मिक शब्द है, भौतिक चीजें नहीं। मनुष्य तो उसको बहुत भौतिकता में लेते हैं, कोई चटपटी चीज खा ली, वाह 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 बड़ा आनंद आ गया है, इतना तीखा खाते, इतना मिर्ची खाते, आनंद आ गया। पर वो जीव का जो आनंद है वो जीव तक, ये वो अंदर जब जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी लाएगा, गैस लाएगा, जलन लाएगा, क्या क्या लाएगा, जीव तक तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए बाबा हमें सात्विक भोजन के लिए कहते हैं। तो इसीलिए वो आनंद नहीं है, या बहुत अच्छा म्यूजिक सुना, जोर से इतनी आवाज सुनी, भाई आनंद आ गया ये म्यूजिक सुनकर, परंतु वो म्यूजिक क्या सुना, कान ही फट गए, कान का पर्दा ही फट गया। कोई पिक्चर देखी आनंद आ गया, पर आंखों की रोशनी चली गई मानो। तो देखो वो आनंद नहीं है, वो क्या है, हा? ये तो अपना ही नुकसान करना है। तो इसीलिए आनंद जो आत्मा के गुणों के आधार से मिलता है, उसी को हम बाबा आनंद कहते हैं, और उसी को स्वमान कहते हैं, वही स्वमान है। कई पूछे ना स्वमान और अभिमान में क्या अंतर है, तो आत्मा के गुणों का जो मान है वो है स्वमान, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, पर मुझे मेरी शांति नहीं छीन सकता है। बाकी धन छीन ले, ये मकान छीन ले, दुकान छीन ले, पर मेरी शांति नहीं छीन सकता है, वो तो मेरा मेरी निजी चीज है। तो उसको हम कहेंगे ये स्वमान है। और अभिमान क्या है, किसी ने मुझे गाली दी या कुछ बुरा कहा, क्या समझता अपने आप को मैं कम हूं क्या, ये अभिमान। कई किसी ने पूछा स्वाभिमान फिर क्या है, तो स्वाभिमान भी अभिमान का ही अंग है, अभिमान का स्वाभिमान। मैं किसी के घर गया और भोजन पर निमंत्रण दिया, और भोजन तो दिया ही नहीं, तो मैं कहूँगी ये कैसा व्यक्ति, आगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगा इसके पास, हाँ मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। पर वो स्वाभिमान नहीं है, वो क्या है, अभिमान है। तो अभिमान और स्वाभिमान एक की है बना, अभिमान के आधार पर है। पर जो ज्ञान के आधार से मान है आत्मा का, वो स्व का मान है। तो ये स्वमान हमारा है। और जहां आनंद है, फिर लास्ट है सातवां शक्ति, शक्ति। और ये सारे जो गुण है वो शक्ति का रूप बन जाते हैं, सभी जितने भी गुण हैं वो सब शक्ति बन जाते हैं। पहले वो गुण होते हैं, और वो गुण जब प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव होते हैं वो शक्ति का रूप ले लेते हैं। जैसे सहनशीलता, सहन करना ये बड़ी शीलता है, पवित्रता है सहन करना, लेकिन ये फिर धीरे धीरे ये सहनशीलता सहन शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर चीज को सहज सहन कर लेती है। तो पहले वो गुण का रूप होता है, फिर वो शक्ति का रूप बन जाता है। तो ये आत्मा के सात मूल गुण, ये हमारे अनादि गुण हैं, ये कोई नहीं देता है न छीन सकता है। मैं भक्ति में भगवान से मांगते ना, हे प्रभु शांति दो, शांति दो, शांति दो, तो शांति भगवान कैसे देगा, कोई चीज है क्या, लो बेटा शांति, लो बेटा प्रेम, लो बेटा आनंद, नहीं। ये तो मन की स्थिति है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। ये मन की स्थिति को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ये आत्मा के मूल गुण है। वो न कोई मुझे देता है, न मेरे से कोई छीनता है, पर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। फिर बाबा कहते हैं आदि गुण जो देवताओं के गुण है, ये सात अनादि गुणों से ही ये पनपते हैं। तो अगर हम देखेंगे भाई अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, है ना, 36 गुण हैं। तो ये 36 गुण ये आदि गुण हैं जो देवताओं के गुण हैं, पर इनका आधार क्या है, इनके आधार ये सात गुण हैं, ये अनादि गुण हैं। तो अनादि गुण और आदि गुण, तो वो जब आत्मा में आते तो कहेंगे सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, पवित्रता को अलग किया है, अलग रखा है, 16 कला माना कंप्लीट प्योरिटी, जो बाबा कहते हैं ना स्वप्न मात्र में भी प्योरिटी इम्प्योरिटी ना हो, क्योंकि स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे संस्कार जो कई जन्मों के हैं ना उसके आधार पर स्वप्न आते हैं। इसीलिए वो स्वप्न क्योंकि वो कई जन्मों के संस्कारों के आधार पर है, तो वो जन्म तो हमारे थे ही अपवित्र, तो वो अपवित्र संस्कार हमारे थे तो स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम धारणा करते जाते हैं, आत्माभिमानी स्थिति लाते जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये सब संस्कार बदलते हैं, तो फिर बाप समान बनते हैं। बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, कैसे तपस्या की, फिर जब बाप समान बने संपन्न संपूर्ण बने तो फिर बाबा कहते हैं इसके आगे का कदम क्या है, फिर हम फरिश्ता बनते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप समान, अभी कहेंगे फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते हैं, तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कहेंगे। अभी प्रजा पिता ब्रह्मा थे तो साकार में थे, अभी क्या है ब्रह्मा देवता, पर देवता तो नहीं है, फिर क्या कहेंगे फरिश्ता। तो फरिश्ता स्थिति माना हड्डी मांस से परे, जिसको बाबा कहते हैं कि आप योग तपस्या में कैसे इस देह भान से परे जाते हो, तो देह भान से परे जाना उसमें भी स्टेजेस है, देही अभिमानी बनना, फिर दूसरा है विदेही बनना, तीसरा है अव्यक्त स्थिति को पाना, चौथा स्टेज है बीज रूप बनना। तो देही अभिमानी तो कर्म में हम बनते हैं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ, ये देही अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, ये देही अभिमानी स्थिति है, मैं आत्मा करावनहार इस इंद्रियों द्वारा करवा रही हूँ, ये देही अभिमानी स्थिति है। लेकिन फिर विदेही स्थिति, राजा जनक का बाबा मिसाल देते हैं, विदेही राजा था, तो विदेह राजा या विदेही राजा, तो इतने बड़े महल में रहता था उस, परंतु उस महल का उसको मोह नहीं था, ये विदेह स्थिति है। इसीलिए सब कुछ करते हैं परंतु न्यारे प्यारे होकर करते, जैसे हमने दादियों को देखा कैसे विदेह स्थिति थी उनकी, कहीं भी उनकी आंख नहीं डूबती थी। मम्मा की तो ये विशेषता थी, मम्मा का आप देखेंगे जब भी चेहरा देखेंगे ना, जब फोटो निकालना चलो भाई मम्मा ने आंख के सामने की वो फोटो की तरफ, लेकिन जब मम्मा चलती थी तो फोटोज में क्या देखते हो, नीचे, कभी इधर उधर उधर उसको देखना उसको देखना कभी नहीं किया, वो उस विदेह स्थिति में रहती थी सदा। फिर विदेह स्थिति के बाद फिर हाँ तीसरी है अव्यक्त अवस्था, जिसको बाबा कहते हैं व्यक्त में रहते भी वो अव्यक्त स्थिति, ब्रह्मा बाबा की वो अव्यक्त स्थिति बनी, दादियों की हमने वो अव्यक्त स्थिति देखी। हाँ दादी जी के सामने हम जाते थे, कई बातें सोच के जाते थे, दादी से ये पूछेंगे ये पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन जैसे दादी के सामने जाते थे सब भूल जाते थे, सब भूल जाते थे, क्या बोलना है क्या पूछना है, बस दादी के आगे हम न बोले पर दादी कुछ बोले बस वो हम वरदान लें, यही सोचते थे, नहीं तो हम ही बोलेंगे तो दादी फिर से हम सुनेंगे कैसे, इसलिए दादी के सामने गए बस दादी इसी सुनाई, वही अच्छा लगता था, बाकी सब भूल जाते थे। वो दादी का जैसे वो अव्यक्त स्थिति, ब्रह्मा बाबा मम्मा सबकी ऐसी स्थिति देखी। और फिर देखो बीज रूप की स्थिति, ये फिर योग की स्थिति है, मैं आत्मा बिंदी बन गई, बिंदु आत्मा, बिंदु शिव बाबा के साथ मेरा संबंध। हमारे निर्वैर भाई बहुत अच्छा सुनाते थे, हम उनके ऑफिस में जाते थे ना तो इनके पास दो पेपर वेट होते थे, दो पेपर वेट यहाँ भी है, तो दोनों पेपर वेट से वो खेलते थे, देखो ये मैं आत्मा बिंदु ये बाबा बिंदु मैं आत्मा बाबा के नजदीक जा रहा हूँ और मैं बाबा के करीब आ गया, तो बाबा का साथ भी मिला और बाबा का साथी भी बना। अब ये भी दो शब्द है, साथ और साथी, तो साथ और साथी का अंतर क्या है, साथ किसको कहेंगे और साथी किसको कहेंगे। बाबा साथ भी है और साथी भी है, तो दोनों में अंतर है या एक ही बात है जी? साथी में अपनापन और साथ में किसी के साथ भी ऐसे। हाँ, बाबा ने उस दिन वरदान में इसका अर्थ बताया था, साथ और साथी में अंतर क्या है। साथ माना जैसे जुड़ा हुआ, साथ है ना, वो जुड़े होते हैं ना, दो कोई सिर से जुड़ा होता है, कोई पीठ से जुड़ा होता है ना, कैसे दिखाते हैं। एक होता है जुड़वे बच्चे, वो तो दो बच्चे माना माँ की गर्भ से पैदा, परंतु जुड़े हुए बच्चे कंबाइंड जिसको बाबा कहते हैं इंग्लिश में कंबाइंड, तो साथ माना कंबाइंड। अब कंबाइंड का अर्थ क्या है और साथी माना कंपेनियन, इसको ये दो शब्द बाबा कहते हैं। तो साथ माना जुड़ा हुआ, मैं हाथ ये उठा रही हूं तो ये हाथ उठा रही हूं, परंतु केवल मैं नहीं उठा रही हूं, हजार भुजाओं वाला शिव बाबा का भी हाथ इस हाथ के साथ उठ रहा है। हाँ, कई बार होता है ना कि हम अकेले होते हैं और बहुत काम होता है, हम कहेंगे अरे मेरे को अकेले को ये सारा काम करना, अकेले मैं अकेली हूँ, अकेली इतना काम करना है, तो उस समय क्या याद रखो, हाँ क्या याद रखो, हाँ हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, तो मैं खाली एक ये दो हाथ थोड़ी काम कर रहे हैं, लेकिन कितने हजार भुजाएं माना कितने हमारे साथ है, तो इसलिए वो साथ है। और साथी का मतलब क्या हुआ, कंपेनियन, तो कंपेनियन साथी माना बाबा मेरे साथ है, मेरे दाएं तरफ भी है, मेरे बाएं तरफ भी है, मेरे पीछे भी है, मेरे आगे भी है, मेरे ऊपर भी है, इसको कहेंगे साथी। ना? रक्षक के रूप में होता है ना, वो मोदी जी जाते हैं तो कैसे उसके अंग रक्षक होते हैं, अंग रक्षक वो सब उनके साथी है ना, अकेला नहीं होता है, वो साथी उनके साथ है। तो बाबा हमारा साथी है, तो साथी कैसे है, हमारे आगे गाइड बन के हमें गाइड कर रहा है। हाँ, कई बार होता है ना कैसे जाए कहाँ जाए, तो देखो बाबा गाइड करेगा, नहीं बच्चे यहाँ से जाओ, बच्चे यहाँ से जाओ। फिर बाबा हमारा गार्ड भी है, गार्ड होता है ना रक्षक के रूप में, गार्ड है, तो जैसे पीछे भी गार्ड होता है, तो गार्ड का काम क्या है, हाँ मालिक की रक्षा करना, कुछ भी पीछे से भी कोई अटैक न करे, तो माया कोई अटैक न करे, क्योंकि माया तो कहीं से भी वार कर लेगी, दुश्मन कोई देखता है क्या कि आगे से वार करना है, वो तो पीछे से भी वार करेगा, तो बाबा पीछे भी है, माया का वार होने नहीं देगा। फिर बाबा हमारे राइट हैंड राइट साइड भी है, मेरा साथी बन के मेरे साथ चल रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। कई अपना अनुभव सुनाते हैं ना, मैं कहीं एकदम सुनसान रास्ते पर जा रही थी और एकदम कोई व्यक्ति आ गया, तो बाबा आप मेरे साथ है, बाबा आप मेरे साथ है, तो कैसे उस व्यक्ति को अनुभव हुआ कि कोई इनके साथ है, जबकि वो अकेली थी, तो कोई बूढ़ा व्यक्ति जैसे उनके साथ है, तो बाबा आप मेरे साथ है, हमें अकेली नहीं, तो डर लगता है ना, तो बाबा मेरे साथ है, अकेली नहीं, तो चाहे राइट हैंड चाहे लेफ्ट वो साथ है। और ऊपर माना छत्र छाया है मेरा, मुझे सदा वरदानों से भरपूर करने वाला, तो ये हो गया साथी का अनुभव। और वो साथ और साथी का अनुभव करते हैं तो उसके आधार से हम कैसे फरिश्ता बन जाते हैं, साथ और साथी का अनुभव करके। और फिर फरिश्ता बनने के बाद फिर आगे क्या करना है, फिर क्या करना है, आगे फिर घर जाना है। फरिश्ता बनने के बाद क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, देखो ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में, कहते बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कब तक बैठेंगे वतन में, घर चलना है। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सब एक ही साथ थे, कराची में सब एक ही साथ थे, और बाबा यही कहते थे बच्चे सबको साथ चलना है, सब साथ जाएंगे वापस घर, साथ जाएंगे। तो जब बाबा कहते थे सब साथ जाएंगे, तो बच्चों ने क्या समझ लिया कि कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। सब साथ में जाएंगे माना कोई शरीर नहीं, शरीर छोड़ेगा तो साथ कहाँ हुआ, गया वो तो गया। तो सब साथ जाएंगे। तो लगा कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम सब जिंदा ही रहेंगे और हम सब साथ जाएंगे। लेकिन फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा और बाबा ने संदेश भेजा कि अभी तो एडवांस पार्टी में मम्मा लीडर बनेगी। फिर बाबा अव्यक्त हो गए, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट चला, फिर एक एक दादियां हमारा साथ बना शरीर छोड़ती गई तो छोड़ते गए। तो फिर बाबा का जो शब्द था कि साथ चलेंगे, वो कब का है? कब है साथ चलेंगे? कब के लिए है? अंत के लिए, अंत के लिए, क्योंकि ये परम धाम के गेट अभी तक खुले नहीं है, कोई नहीं गया है परम धाम, ब्रह्मा बाबा भी नहीं गया है। तो इसीलिए अंत में हम सब एक साथ जाएंगे। परंतु कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? साथी बन के जाएंगे या बराती बन के जाएंगे? साथी, बराती तो नहीं ना। बराती में तो बहुत आ जाएंगे, शिव की बारात का गायन है, अन्य किसी देवता की बारात का गायन नहीं है। अगर है तो है, श्री राम की बारात का गायन है। मैं अयोध्या गई थी, अयोध्या में, और वहाँ जनकपुर जहाँ ये सीता का घर, बहुत बड़ा महल है जनकपुर में, नेपाल में है, तो वहाँ वो दिखाते हैं, तो वो एक यज्ञ कुंड है, चार यज्ञ कुंड है, तो दिखाते कि जो चार बेटियाँ थी जनक राजा को और चार बेटे थे दशरथ राजा को, तो दशरथ के बच्चे और जनक राजा के बेटियाँ, तो वो चारों का एक ही साथ विवाह दिखाते हैं। तो वो चार वो यज्ञ कुंड दिखाते हैं वहाँ की, जैसे चारों का विवाह हुआ। तो अयोध्या से राम की बारात आई थी, जनकपुर आई थी, तो वो बताते हैं वो बारात कैसे, राम की बारात अयोध्या से जनकपुर गई थी। तो बस दिखाते, मतलब थोड़ा सा वर्णन है राम की बारात का, परंतु जो बड़ी बारात वो किसकी है? शिव की। हाँ, तो शिव की बारात में तो क्या है, क्या क्या दिखाते है पता है? हाँ, पिशाच भी दिखाते हैं, भूत प्रेत सब दिखाते हैं, सब भटकती हुई आत्माएं, अंत में जहां भी होगी ना सब आत्माएं जाएगी, भटकती आत्माएं भी तो जाएगी ना, सत्युग में थोड़ी कोई भटकती आत्माएं होगी, वो सब परम धाम में जाके रेस्ट करेगी। और जो अभी झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, सबको बाबा ले जाएंगे घर, सजा खिला करके सबको घर ले जाएंगे, नहीं सो जाओ, भी सो जाओ। और भगवान खुद भी सो जाते हैं, कल भी बाबा की मुरली में था ना, आधा कल्प बाबा विश्राम करते हैं, विश्राम करते, बाबा की कोई जरूरत ही नहीं है सत्युग त्रेता में, वो बच्चों को सब दे दिया और खुद बाबा विश्राम करते हैं। इसीलिए सभी धर्मों में, सभी धर्मों में 6 दिन भगवान ने बहुत काम किया और 7वें दिन भगवान ने आराम किया, इसीलिए 1 दिन छुट्टी मनाते हैं 7 दिन में। लेकिन हर एक धर्म में अलग अलग दिन है। क्रिश्चियनिटी में संडे को मनाते हैं, रविवार, फिर ये जू धर्म में शनिवार को मनाते हैं, शनिवार को साबित डे कहते हैं, और ये मुसलमानों में शुक्रवार। और भारत में पता है, भारत में कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, रोज रोज स्नान करना है, ऐसे नहीं जुम्मे के जुम्मे ही स्नान करना है। रोज स्नान करना है, रोज मंदिर में जाना है, ऐसे नहीं कि जुम्मे के दिन ही मंदिर जाना है, वो मस्जिद जाना है, या चर्च में संडे के दिन ही जाना है, नहीं, रोज पूजा करनी है, रोज दिया जलाना है ना, तो हमारे लिए रोज है और उनके लिए तो एक ही दिन है। तो इसीलिए हमारे लिए कोई हॉलिडे नहीं है, लेकिन हर डे होली डे है, हॉलिडे नहीं है, होली डे है, क्योंकि हर दिन वो पवित्रता का दिन है। तो इसीलिए बाबा ने हमको फिर का घर जाना है। अब घर जाकर के फिर क्या करेंगे, तो जो यहाँ पुण्य की कमाई जमा करेंगे वो तो हाथ भरतू जाएंगे, और जो नहीं करेंगे पुण्य की कमाई जमा, वो तो सजा खा के हाथ खाली जाएंगे। अब हाथ खाली जाएंगे तो सत्युग त्रेता में कैसे आएंगे? परंतु जो बढ़तू जाएंगे, जितना बढ़तू जाएंगे उस अनुसार पद मिलेगा वहां। तो इसीलिए ये है लंबी यात्रा। और शुरू कहां से करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति से। और कहां पहुंचना है? संपन्न संपूर्ण बन करके फिर फरिश्ता बन के घर जाना है, नई दुनिया में आना है। अब अपने आप से पूछो, मैं कहां तक पहुंचाऊं? जैसे यात्रा पर जाते हैं तो कितने माइल कवर हो गए, बाकी कितना बाकी है उस मंजिल तक पहुंचने में। तो अभी हर एक अपने से पूछे, मैं कहां तक पहुंचाऊं? अभी अभी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मैं कहां तक पहुंचाऊं? ये रोज अपनी चेकिंग करनी है। तो यहां भी अपनी ऐसे ही चेकिंग करना, ठीक है? तो ये चेकिंग करते करते हमें मंजिल तक पहुंचना है। तो कितना बड़ा लक्ष्य, कितना बड़ा उद्देश्य बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा कहते, इतना काम है तो नींद कैसे आएगी? आराम से सो जाएंगे क्या? नहीं, बहुत मेहनत करनी है। फिर बाबा मेहनत भी कहते हैं, फिर बाबा कहते, बच्चे बहुत सहज है, सेकंड में जीवन मुक्ति। इतने साल हो गए बाबा, हाँ 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 88 साल हो गए, है ना? अभी 88 ईयर्स, 88 साल हो गए। पर यात्रा तो हमारी चली रही है, चली रही है। जब तक हम संपूर्ण न बने, विनाश करने वाले तो तैयार बैठे हैं। रोज बाबा विनाश की बातें करते हैं, रोज दुनिया में भी यही आवाज है। कितनी न्यूज आती है विनाश की बातें, क्या क्या बनाते रहते हैं, हथियार बनाते रहते हैं, विनाशकारी हथियार बनाते रहते हैं। ये किसके लिए है? अपने ही मौत के लिए। तो विनाश वाले तो तैयार बैठे हैं, बाकी क्यों नहीं विनाश हो रहा है? क्यों नहीं विनाश हो रहा है? हाँ, हम बच्चे तैयार नहीं है। इसलिए बाबा को मुरली में कहना पड़ता है। प्रकृति भी पूछ रही है, बाबा हम अपना काम कब शुरू करें? एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, क्योंकि उनको योग बल की रचना को जन्म देना है। तो वो भी पूछ रही है, हम अपना काम कब शुरू करें? तो प्रकृति भी पूछ रही है, एडवांस पार्टी भी पूछ रही है। अभी फिर बाबा कहते हैं कि बाबा उनको क्या जवाब दे? फिर बाबा हमको पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं, बच्चे कब तक तैयार होंगे, कब तैयार होंगे, कब पर्दा खोले? होता है ना, पर्दा खोलने वाले तैयार हैं, लेकिन अंदर एक्टर्स अभी तैयार ही नहीं है, तो पर्दा खुले कैसे? तो पर्दा कब खुलेगा? विनाश होना माना पर्दा खुलना, वो कब होगा? जब हम बच्चे तैयार होंगे। तो कब तैयार होंगे? इसलिए बाबा दो प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, संगम युग पसंद है या फिर घर जाना पसंद है? हाँ, दो समझ नहीं, संगम युग पसंद है वो हाथ उठाओ। अच्छा, घर नहीं जाना है घर नहीं जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं ऐसे ताकि संगम युग में ही रहे हम, पुरुषार्थ न करें। लेकिन नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है जी, ड्रामा तो अपना काम करेगा ही। इसीलिए हम अलबेले न बने कि हाँ हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो विनाश नहीं होगा। वो तो अपना समय पर होना ही है। हम चाहे पुरुषार्थ करें या न करें, ड्रामा हमारे लिए रुकेगा नहीं, समय किसके लिए रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे विनाश तो तैयार है, वैज्ञानिक सब तैयार है, बटन दबाने की देर है बस, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि यज्ञ की यज्ञ माना ये अविनाशी, तो अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अब इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित होती है, क्योंकि जैसे शिव बाबा आए, स्थापना का कार्य शुरू किया, विनाश का भी उसी समय ही आरंभ हुआ। उसके पहले मैं, क्योंकि विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो हमने ये नोट किया, जो वैज्ञानिकों ने ये जो एटम को माना डिस्कवर किया, एटम समझते थे कि ये सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है, एटम सबसे छोटा है, लेकिन 36-37 उसी समय इनको पता चला कि एटम को भी तोड़ सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन है, और इनको जैसे तोड़ते हैं एटम को तो इतनी शक्ति पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन इनका निकलता है जिससे इतनी शक्ति पैदा होती है जो एटम बॉम्ब बन सकता है। तो ये उस एटम बॉम्ब का ज्ञान उसी समय हुआ, नहीं तो एटम ही सबसे छोटा माना जाता था। वास्तव में ये एटम शब्द भी कहाँ से निकला, आत्मा से निकला है, क्योंकि आत्मा सबसे सूक्ष्म है, तो प्रकृति ने भी सबसे सूक्ष्म वो एटम बताया, लेकिन एटम से भी सूक्ष्म है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो बताते हैं, और उनसे इतनी शक्ति निकलती है, यूरेनियम वो ये प्लूटोनियम यूरेनियम ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उनकी वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं सहज, और उनसे इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है जो पूरा विनाश कर सकती है। तो यहाँ स्थापना का कार्य शुरू हुआ और वहाँ विनाश की तैयारी शुरू हुई, और ये विनाश तो तैयार है पर स्थापना पूरी नहीं हुई है, इसीलिए विनाश ज्वाला प्रज्वलित इस यज्ञ से ही होगी। तो ये यज्ञ की समाप्ति जब होगी तो फिर विनाश भी साथ साथ होगा। तब तक हमें क्या करना है, तब तक क्या करना है, पढ़ना और पढ़ाना है, बाबा को याद करना है और सबको याद दिलाना है, कमाई जमा करनी है और दूसरों से भी कमाई करानी है। तो ब्राह्मणों का यही वास्तव में लक्ष्य है। तो ब्राह्मण से देवता बनने की प्रक्रिया देखो, हाँ छोटी मोटी नहीं है, पर अगर देखो तो एक सेकंड बस सामने में, कौन मेरा कौन, मुझे क्या करना है, स्मृति आ गई, समर्थी मिल गई, आत्मा शक्तिशाली बन गई, एक सेकंड का खेल। चलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति।